द्वारपाल के लौटने तक सुदामा का मस्तिष्क अनेक प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। शीघ्र ही उन्हें दौड़ते पैरों की आवाज सुनाई दी। सुदामा आतंकित हो उठे।
महान राजा को अपना मित्र बताने के अपराध के लिए द्वारपाल ने दूसरे प्रहरियों को अवश्य ही मुझे पकड़ने के लिए बुलाया है।
दूसरे ही क्षण द्वार भर भरा कर खुल गए और सुदामा चकित रह गए जब उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देखा। उनके पीछे रुक्मणी और उनके सारे दरबारी थे। पास पहुंचकर कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में समेट लिया।
सुदामा, मेरे मित्र, मेरे सुदामा, इतने वर्षों से तुम कहाँ थे?
बड़े उत्साह के साथ बात करते हुए कृष्ण ने सुदामा से कहा। सुदामा स्तंभ रह गए, वो एक भी शब्द ना कह पाए। कृष्ण के इस स्वागत से उनकी आंखें भर आईं, पर कृष्ण बिना रुके बोलते ही चले गए।
तुम्हें गुरुकुल के दिन याद हैं? कितने अच्छे दिन हमने साथ साथ वहां बिताए। और याद है कैसे चोरी छुपे हम जंगल निकल जाया करते थे?
कृष्ण तो जैसे बिना रुके बोलते ही चले जा रहे थे।
रुक्मणी, जानती हो ये कौन है?
कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जवाब दिया, हाँ स्वामी, आपने हजारों बार अपने मित्र की चर्चा की है। आप हमेशा कहा करते थे कि ये एक दिन अवश्य आपसे मिलने आएंगे। स्वामी, आपके मित्र थक गए होंगे, क्यों ना हम इन्हें अंदर ले चलें और थोड़ा विश्राम करने दें। इसके बाद इनसे आप दिन भर कर बातें कर लीजिएगा।
ठीक कहा रुक्मणी। आओ सुदामा, तुम्हें देखकर इतना उत्तेजित हो गया कि बाकी सब भूल गया।
कृष्ण और रुक्मणी सुदामा को अंदर ले गए। सुदामा राजमहल का वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गए।
आओ मेरे सखा, यात्रा के बाद तुम थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारे थके हुए पांव धो दूं।
कृष्ण ने सुदामा के थके और दुखते पैरों को एक सोने की परात में धोया।
कृष्ण दीर्घायु।
सारे दरबारी
कृष्ण दीर्घायु
और उनके दिल अपने राजा के प्रति आदर से भर गए। कृष्ण दीर्घायु हो। इसी बीच रुक्मणी ने सुदामा के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन का प्रबंध राजमहल में किया। इन सब के बीच सुदामा के मुख से एक भी शब्द ना निकला। इस अवभगत ने उन्हें गदगद कर दिया। अचानक कृष्ण सुदामा की कमर में बंधी पोटली पर पड़े और उन्होंने कहा,
सुदामा, इस पोटली में क्या है? मेरे लिए कुछ है?
नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो कुछ यूं ही।
सुदामा बुदबुदाए। उन्हें चिवड़े की ये दीनहीन भेंट कृष्ण को देने में शर्म आ रही थी, पर कृष्ण ने उन्हें कोई अवसर ही ना दिया संभलने का। उन्होंने सुदामा से पोटली छीन ली और उसे खोला।
चिवड़े? सुदामा, तुम्हें याद रहा कि चिवड़े मुझे पसंद हैं? कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ये।
रुक्मणी को देखते देखते कृष्ण ने उनकी एक मुट्ठी भर ली और मुंह में डाल ली।
सुदामा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया।
जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी मुंह में डालने ही वाले थे कि रुक्मणी ने उन्हें रोक लिया। सब आप ही खा जाएंगे, मेरे चखने के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण मुस्कुराए और तीसरी मुट्ठी रुक्मणी के लिए छोड़ दी। अपने दीनहीन उपहार को कृष्ण द्वारा खाते देख सुदामा की खुशी का ठिकाना न रहा।